हम लोग छह गाला जी पर चर्चा कर रहे हैं लास्ट क्लास पर। मानो समीर रिजुल आप लोग नहीं आए थे, तो वी डिस्कस द बिट। वो जो गुरुदेव श्री के प्रवचन हमने सुने थे उस पर ही और थोड़ा डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब आज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे गुरुदेव श्री के प्रवचन को। फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर कैसा रहा आप सब लोगों का? मानस
अच्छा था आपका कैसा रहा?
व्हाट यू ऑल डिड डू, लाइक डू यू सेलिब्रेट?
हम बस जो शो होती है वो टीवी पे देखते हैं और मिडनाइट तक उठे रहते हैं बस।
समीर रिजुल व्हाट डिड यू डू? ओ समीर रिजुल आर इन शेयर आई थिंक। ओके। समीर रिजुल आप लोग हैं?
Unless you can see from the dashboard, are they there?
I don't think so.
चलिए। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि जो हमने दूसरे काल में संसार का कारण, संसार के दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को माना था, उसको एकदम पक्का करके आए थे कि हमारे दुखों का कारण वही है, वही है। उसके बाद अब यहाँ तीसरी ढाल में पंडित जी साहब हमें सुख के कारण बता रहे हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया किससे कि आत्मा को किस चीज में सुख है, अनाकुलता में सुख है। और अनाकुलता कहाँ पर है? मोक्ष में है। इसलिए हमको मोक्ष में जाने वाला मार्ग, उस रास्ते पर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो सत्यार्थ स्वरूप है, जो सच्चा है, जिसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है, ऐसा सीधा सीधा मोक्ष मार्ग वह निश्चय मोक्ष मार्ग है सत्यार्थ। और जो उसका कारण कह दिया जाता है, जो उपचार से मोक्ष का मार्ग कहा जाता है, जो सच्चा नहीं है, उसको बोलते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का वर्णन है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड विद दीज टू टाइप्स। मोक्ष मार्ग दो प्रकार के नहीं, दो रास्ते नहीं, जैसे कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसे दो अलग अलग, तीन अलग अलग, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग रास्ते बताए। तो ऐसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीन रास्ते हो गए। आप या तो भगवान की भक्ति में लग जाओ तो आप वैकुंठ चले जाओगे, आप अपना काम करते रहो, उस फल की चिंता नहीं करो तो आप वैकुंठ में चले जाओगे, और यदि आप तपस्या करने लगो, योगों को साधने लगो तो आप वैकुंठ में चले जाओगे। ऐसा यहाँ पर मोक्ष मार्ग में ऐसे तीन अलग अलग रास्ते नहीं है। जैसे आत्मा के ध्यान करने वाले मोक्ष में जाते हैं, उसी प्रकार जैन मुनिराज, 28 मूल गुण वाले मुनिराज ही मोक्ष में जाते हैं। दो रास्ते नहीं है कि या तो 28 मूल गुणों का पालन कर लो या फिर आत्मा का ध्यान कर लो। देयर आर नो टू वेज, देयर इज ओनली वन वे, वन इज मोक्ष मार्ग। उसको जब आप अंदर से मूलतः देखते हो तो वह आत्मा का आचरण है, आत्मा में लीनता रूप है, और जब बाहर से देखते हैं तो वह 28 मूल गुणों के पालन रूप दिखता है, सातत्व की श्रद्धा इन विकल्पों रूप दिखता है। ठीक है, उसके बाद पंडित जी साहब ने निश्चय सम्यक दर्शन का सेकंड नंबर के छंद पर स्वरूप बताया था। पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, पर द्रव्यों से भिन्न स्वरूप में रुचि, स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप ही अच्छा लगना, यह सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्यों से भिन्न स्वरूप को ही जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और ये क्या है? कला है। कला क्यों है? हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था। कला इसलिए बिकॉज इट्स एन आर्ट, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। वह स्व को भी जानेगा पर को भी. यू कैन नॉट एवर, आप ज्ञान की पर्याय को कभी कंपेल नहीं कर सकते कि वह पर को नहीं दिखाए, वह स्व को ही दिखाए. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल. इंजीनियरिंग से ही, लाइक बेसिक फंक्शनिंग बाय फैक्ट्री सेटिंग्स, ज्ञान की पर्याय इज बाउंड टू शो यू पर एंड स्व टुगेदर साइमल्टेनियसली. सो नाउ व्हाट इज द आर्ट इन इट? द आर्ट इज टू नॉट लुक एट पर बट ओनली लुक एट स्व. आप अपने स्वद्रव्य को ही जानो, उसमें ही संतुष्ट रहो, उसमें ही रति करो, उसमें ही तन्मय हो, जिससे आपको उत्तम सौख्य प्राप्त होगा. समय सार जी की गाथा है, राइट? आप उसको ही प्राप्त करके उसमें ही संतुष्ट हो, उसमें ही रतिवंत रहो, तो आपको उत्तम सौख्य प्राप्त होगा. तो ये कला है. लाइक आपको दिख सब कुछ रहा है, आपको देखना सिर्फ अपने स्वरूप को है. जैसे कि आईने में आपको दिख सब कुछ रहा है, आपको देखना सिर्फ अपने चेहरे पर, अपने नोज को है कि चलो भैया नोज ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. तो दैट्स अ कला. सब कुछ दिखते हुए भी आप देख क्या रहे हो? ऐसी पर सारी द्रव्यों को जानते हुए भी यह आप रूप को जाने, यह सम्यक ज्ञान की कला है. और जब आप रूप को ही रुचि करता है, उसको ही जानता है, तो फिर उसमें शीघ्र ही लीन हो जाता है. यह निश्चय सम्यक चारित्र है. यह यहाँ तक निश्चय मोक्ष मार्ग पूरा हुआ. अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई. अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को वह बताएंगे पंडित जी साहब, जो कि क्या है. निश्चय में थोड़ा बहुत हेतु होता है. हेतु मतलब व्यवहार से निश्चय हो जाता है, यह नहीं, लेकिन ये उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर देता है. ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन था किसी को? Anybody has any question?
नहीं.
ठीक है, अब हम तीसरा छंदाच पढ़ेंगे. जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यो का त्यों सर धानो है सोई सम कित व्यवहारी अब इन रूप बखानो दिन को सुन सामान्य विशेष है दृढ़ प्रतीत और आनो. अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ से पंडित जी साहब बताने वाले हैं. ठीक है, तो देखो निश्चय सम्यक दर्शन में तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आत्मा को जानो, आत्मा को रुचि करो, श्रद्धा करो और आत्मा में ही लीन रहो. निश्चय मोक्ष मार्ग है. तो हम व्यवहार मतलब समझे कि ठीक है, सामने व्रत आदि करो, ये व्यवहार होगा. तो पंडित जी साहब व्रत आदि करने को व्यवहार नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ और, किसी और चीज को व्यवहार यहाँ पर बोल रहे हैं. यहाँ पर बखानो, किसने बखानो? जिन, जिनेंद्र भगवान. जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध अरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यो का त्यों सर धानो. जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये तत्व जिनेंद्र भगवान ने जैसे कहे हैं ज्यों का त्यों वैसा श्रद्धान करो. कितने तत्व कहे जिनेंद्र भगवान ने? सात तत्व. सात तत्व कितने कहे जिनेंद्र भगवान ने? जिनेंद्र भगवान ने सात तत्व कहे. इनको ज्यों का त्यों सर धानो. ज्यों जिनेन्द्र भगवान ने सात तत्व कहे हैं, इनको जैसे हैं वैसा श्रद्धान करना। सी, हम जैन नहीं है, हम अन्य धर्म को मानते हैं, तो क्या इसके कारण हमारे आश्रव बंद संवर निजरा मोक्ष नहीं होगा? बताइए। मैं चार गति पे विश्वास नहीं करता, तो क्या मेरे मरण के बाद मैं सचमुच कहीं कहाँ जाऊंगा, जन्नत में या जहन्नुम में चला जाऊंगा, या फिर कहीं पर वैकुंठ में, या फिर हेवन कहीं भी चला जाऊंगा, कि चार गतियों में से किसी एक गति में जाऊंगा? व्हाट विल हैपन? हमारे पास सात तत्वों का श्रद्धान हो या नहीं हो, इन सात तत्वों की एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर है। देखो, चार चीजें होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आप सबको पता है चार प्रकार की चीजें हैं, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, ठीक है। इन्हीं के रिस्पेक्ट में चार प्रकार के डिविजन भगवान ने जिनवाणी में गाए हैं, छह द्रव्य, सात तत्व, पांच अस्थिकाय और नौ पदार्थ। आप सबको इसके बारे में पता है भाई, छह द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, बुद्ध, चार, मधर्म, आकाश, काल। सात तत्व कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, वाशो, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। पांच अस्थिकाय कौन कौन से होते हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। और नौ पदार्थ कौन कौन से होते हैं? संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ठीक है। ये चारों चीजें अलग नहीं है, छह द्रव्यों से सात तत्व अलग नहीं है, सात तत्वों से नौ पदार्थ अलग नहीं है, सात तत्वों से पांच अस्थिकाएं अलग नहीं है। ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी आर लुकिंग फ्रॉम इज डिफरेंट। जब आप द्रव्य की अपेक्षा देखते हो तो छह द्रव्य देखते हो, जब आप क्षेत्र की अपेक्षा देखते हो तो पांच अस्थिकाएं दिखते हैं, जब आप काल की अपेक्षा देखते हो तो सात तत्व दिखते हैं, और जब आप भाव की अपेक्षा देखते हो तो नौ पदार्थ वही चीजें बन जाती हैं। देयर इज नो डिफरेंट थिंग, राइट? तो यदि अलग अलग जाति की अपेक्षा आप देखोगे, द्रव्य की अपेक्षा देखोगे, तो छह तरह की जातियां इस लोक में पाई जाती हैं, जी, पुद्गल, धर्म, मधर्म, आकाश, काल। जब आप उन्हीं को उन्हीं के काल, उनके क्षेत्र की अपेक्षा देखोगे कि भैया कौन कितना बड़ा है, तो भैया जो बहुप्रदेशी है वह अस्थिकाय कहलाता है, तो पांच द्रव्य अस्थिकाय रूप है, पंच अस्थिकाय है, और जो अस्थिकाय रूप नहीं है वह एक बचा काल। तो जब आप क्षेत्र की अपेक्षा, उनके प्रदेशों की अपेक्षा देखते हो, तो वे ही द्रव्य क्या बन जाते हैं? अस्थिकाय बन जाते हैं, ठीक है। जब आप उनको काल की अपेक्षा देखते हो कि इनमें से त्रिकाल रहने वाले कौन से हैं और क्षणवर्ती कौन से हैं, तो आप देखते हो कि देखो, जीव और अजीव ये तो भैया अनादि अनंत द्रव्य हैं, और इनकी आश्रव बंद रूप पर्याय जो है ये कैसी है? अनादि शांत, अनादि काल से रहेंगी और निश्चित खत्म हो जाएंगी यदि ये भव्य जीव है। संवर निजरा पर्याय का काल कैसा है? ये सादी अनंत, नहीं सादी शांत, अभी उत्पन्न होंगी संवर निजरा की पर्याय और ये थोड़े टाइम बाद चली जाएंगी। और ये मोक्ष की पर्याय कैसी है? ये सादी अनंत, एक बार उत्पन्न होगी और कभी नहीं जाएगी। तो काल की अपेक्षा जब हमने इन छह द्रव्यों का ही डिस्टिंक्शन किया, तो ये सात तत्वों में डिवाइड हो गए। ओके, देखो सात तत्वों में कितने डिवीजन है काल के? जीव अजीव, अनादि अनंत, आश्रव बंद, अनादि शांत, अनादि शांत, संवर निर्जरा, सादी शांत, उत्पन्न हुई, खत्म हो गई, और मोक्ष सादी अनंत। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया ये चार प्रकार के डिवीजन? हेलो, मैं डिटेल करूं इसका थोड़ा और इज इट अंडरस्टैंडेबल? मानस, मानव सारी दे
हाँ समझ में आ गया।
शादी शांत अनादि अनंत ये सब समझ में आ गया होगा ना। एक्स्ट्रा एंड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। जीव और पुद्गल और अधर्म अधर्म आकाशकाली दोनों जीव और अजीव में आ गए। ये दोनों अनादि काल से, कोई इनकी बिगिनिंग फेस नहीं होती, राइट। सी कितना ज्यादा यू नो वी हैव लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2017, राइट, स्टार्ट हो गया। यस और नो?
हाँ जी हाँ
ये दुनिया 2017 साल पहले बनी थी,
नहीं
इसके पहले भी थी?
नहीं
करेक्ट करेक्ट, दुनिया तो पहले भी थी 2017, राइट। अच्छा, देन व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग 2017? 2017 हैप्पी न्यू ईयर, लाइक हु गेव दिस नेम टू 2017? वी डिफाइंड इट। चलो भैया 2017, लाइक यहाँ से हमारा ये न्यू कैलेंडर विल स्टार्ट। वी ऑल यू नो फॉर्मुलेटेड एवरीथिंग। लाइक सी, काल इज काल, द काल डज नॉट हैव एनी डिस्टिंक्शन लाइक आर, मंथ, वीक, ईयर, मंथ, देयर इज नो डिस्टिंक्शन इन टाइम। टाइम इज एकदम एक फ्लो से चला जा रहा है, टाइम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हमने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम में डिस्टिंक्शन किया, करेक्ट।
हाँ
हमने 48 मिनट्स का मुहूर्त बोल दिया, तो जेम्स चूज 48 मिनट्स का मुहूर्त, उन लोगों ने 60 मिनट्स का आवर चूज लिया, ठीक है, 1 आवर। हमने 30 डेज, हमने 15 15 दिनों के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षों को चुना, उन लोगों ने 30 31 डेज के मंथ बना दिए। वी ऑल मेड अवर कैलेंडर्स, वी ऑल एज पर अवर कन्वीनियंस, एज पर अवर। तो लाइक हिंदू कैलेंडर और जैन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन मून, बिकॉज हमारे यहाँ मून इज सुप्रीम, नॉट द सन, राइट। उन लोगों ने कैलेंडर अपने सन के हिसाब से बना लिया, दे बोथ एज कैलेंडर्स मेड बाय अस, राइट, करेक्ट। वी गेव नेम्स, वी डिवाइडेड टाइम, और हमने एक पूरी अपने हिसाब से एक पूरी व्यवस्था बना ली, राइट।
हाँ
दिस व्यवस्था इज मेड बाय अस, वी मेड इट। सो नाउ वी डिसाइडेड कि यार 12 महीने का एक साल होगा और 12 महीने के बाद साल बदलेगा, ओके। तो हु मेड दिस? वी मेड इट। एंड जब वो साल बदलने के लिए आया, नाउ वी फील हैप्पी अबाउट इट, ये न्यू ईयर इज कमिंग, न्यू ईयर इज कमिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट आर वी बीइंग हैप्पी फॉर समथिंग। इट्स लाइक यू नो बच्चों को गेम खिलाते हैं, मैं एक बार ताली बजाऊंगा और बच्चे अच्छी तेज बोले, ये हंसेगा वो बहुत तेज, देर इज नो फन इन इट। लाइक इफ यू लुक एट इट, बच्चों के गेम में कोई मजा नहीं होता। आप कुछ भी करोगे ना, अच्छी तेज ताली बजा दोगे, उसको मजा आएगा, राइट। बिकॉज ही थिंक, एक बच्चे को क्या पता, उसको पता हाँ मुझे हंसना है तो वो हंसने लगता है। सिमिलरली फर्स्ट वी इंस्टीट्यूटेड सम डिविजन, एंड देन हमने अपनी इमेजिनेशन से मान लिया, ओ नया साल आ रहा है। देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन इन टाइम, टाइम तो अनादि से है, काल द्रव्य अनादि से है, देयर इज नो नॉवेल्टी इन टाइम। लाइक 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कुछ नया नहीं हो गया, इट्स वॉट वी इमेजिन। ओके, 31 गया, 1 आया। एंड सी, आपके यहाँ जब 12 बज रहे थे रात को, न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा था, तब इंडिया में 12 नहीं बज रहे थे, इंडिया में न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं हो रहा था। तो फॉर इंडियंस द इमेजिनेशन ऑफ न्यू ईयर वॉज हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम, फॉर यू पीपल द इमेजिनेशन ऑफ न्यू ईयर वॉज हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम, यस और नो?
यस
इजंट अवर होल सेलिब्रेशन जस्ट यू नो एक अपना ही बहाना? हम लोग इतने परेशान हो गए अपने आप से कि हम खुद ही को एक वो दे देते हैं, चलो भैया 12 बजेंगे घड़ी और हम सबको बहुत ज्यादा खुशी मनानी है। खुशी हो रही हो नहीं हो रही हो, एटलीस्ट प्रिटेंड यू आर हैप्पी एंड देन वी सेलिब्रेट 12 बजने तक, वी होल्ड डाउन अवर हैप्पीनेस, वी नॉट बी हैप्पी बिफोर 12, ओके, बिकॉज 12 बजेंगे तब समथिंग न्यू विल कम। सी व्हाट हैप्पीनेस दैट कैन कम एट 12, इफ इट कैन कम एट 12 बिकॉज आई थॉट इट विल कम एट 12, व्हाई कांट इट कम बिफोर 12? इट कैन कम, इट्स इन माई हैंड, बट वी हैव डिवाइडेड, हमने खुद ही अपने तरीके बनाए कि अपने बहाने बनाए खुश होने के, और फिर हम पागलों के जैसे उन्हीं में खुश हो जाते हैं, ओन इमेजिनेशन, ओन इंट्रीब्यूशन। करेक्ट, यहाँ पर ये है कि जब हम काल के हिसाब से इसको बांटते हैं, तो दिस काल इज ऑल्सो, देर इज नो नोवेल्टी इन टाइम, देर इज नथिंग न्यू इन जीव, अजीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काली, अनादि, अनंत है। तो ये दो गए जीव और अजीव तत्व में। आश्रव और बंध मुझे हो रहे हैं अनादि काल से हो रहे हैं, पर्याय की अपेक्षा की एक समय की है, इनकी कंटिन्यूटी की अपेक्षा से देखूं, ये अनादि से तो हो रहे हैं और निश्चित यदि मैं भव्य हूं तो ये खत्म हो जाएंगे, इनका अंत होगा। दे आर फ्रॉम अनादि बट दे आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। तो उनका काल कितना है, अनादि स्थान, खत्म हो जाएगा। संवर निर्जरा भी मुझे स्टार्ट नहीं हुई है बट स्टार्ट होकर भी हमेशा नहीं रहने वाली। मुझे जैसे ही केवल ज्ञान अरहंत दशा हुई और जैसे ही मैं सिद्ध पहुंचा, मुझे फिर संवर निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि कर्म तो संवर, कर्म ही नहीं रहे तो कर्मों का आना कौन रुकेगा और कर्मों का झड़ना क्या होगा। तो ये उत्पन्न होती है तो इट्स नॉट अनादि एंड ये खत्म हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अनंत, इट्स साधिस्थान। एंड मोक्ष अभी तक हुआ नहीं है बट वंस विल इट हैपन, इट विल स्टे फॉरएवर, सो इट्स सादि अनंत, वंस इट विल गेट टेक बर्थ एंड देन इट विल नेवर डाई। ठीक है, जब काल की अपेक्षा हमने डिविजन किया तो क्या बन गए, सात तत्व बन गए। और जब हम इनके भाव की अपेक्षा डिविजन करते हैं तो यही नौ पदार्थ, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना वाई जीव बाकी से करती है, फिर आश्रव और बंध, तो आश्रव और बंध में सब कुछ, देन इसमें फर्दर डिफ्रेंसिएशन पुण्य और पाप का। ठीक है, आश्रव और बंद पदार्थ बहुत जो यूजुअल जो चल रहा है एज अ फंक्शनिंग, और उसमें जो स्पेशल हमने काम किए वो पुण्य और पाप, ऐसे नौ प्रकार के भाष की अपेक्षा बंद हुए। ठीक है, चार प्रकार की चीजें, दे आर नथिंग, छह द्रव्य कहो, सात तत्व कहो, नौ पदार्थ कहो, पांच अस्थिकाय कहो, हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बट जब हम द्रव्य के हिसाब से बात करते हैं तो हम उसको छह द्रव्य कह देते हैं, क्षेत्र के हिसाब से बात करते हैं तो पांच अस्थिकाएं कह देते हैं, काल के हिसाब से बात करते हैं तो सात तत्व कह देते हैं, और भाव के हिसाब से बात करते हैं तो नौ पदार्थ कह देते हैं। यस, बट इनमें कुछ लाइक छह द्रव्य बोला तो सभी सात तत्व आ गए, नौ पदार्थ आ गए, पांच अस्थिकाएं आ गए। Anybody has question in this? Any doubt in this? कुछ भी दिक्कत है? No?
No.
वापस जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, किसने बोला, जिन जिनेन्द्र भगवान ने, किनको, जीव अजीव तत्व आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों को जिन जिनेन्द्र भगवान ने कहा, किनको, इन सात तत्वों को, जो का क्यों श्रद्धानो, जैसे एज इट इज, एज इट इज श्रद्धान करो। ये क्या है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। सात तत्वों की श्रद्धा ये क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। आप सात तत्वों को मान लो और आपको निश्चय सम्यक दर्शन हो, नो इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, सात तत्व किसने बोले हैं, जिनेन्द्र भगवान ने बोले हैं, नहीं उन्होंने तो छह द्रव्य बताए हैं, उन्होंने छह द्रव्य भी बताए, सात तत्व भी बताए, पांच अस्थिकाएं भी बताए, नौ पदार्थ भी बताए, उन्होंने सब कुछ बताया। जस्ट थिंक अबाउट इट, हम चारों नियोगों को खोलकर बैठे, छह द्रव्य के बाहर क्या है बताओ आप, छह द्रव्य के बाहर क्या चीज है,
कुछ नहीं।
सात तत्व के बाहर क्या है, छह द्रव्य का
समूह,
करेक्ट। तो देखो जो हमारा तीन 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 लोग का ये 343 घन राजू, 343 क्यूबिक राजू, इसका ही हमारा तीन लोग है, जिसको देख महास्कंद है, मतलब अजीब उद्गल द्रव्य है। इट इज सराउंडेड बाय वात वलय, इट इज सराउंडेड बाय स्पेस, अलोकाकाश, राइट, वो आकाश द्रव्य है। तो तीन लोक की रचना विच इज करना नियोग से द्रव्य कहने पे आ जाती है। पूरा कर्मकांड आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष को कहने में आ जाता है। पूरा प्रथमा नियोग जीव और अजीव को अनादि अनंत कहने में आ जाता है, क्योंकि ये अनादि अनंत रहते तो कुछ कहानियां तो होंगी कि नहीं होंगी, इनकी सारी स्टोरी प्रथमा नियोग बन जाती है। एंड आश्रव बंध को छोड़कर संवर निर्जरा मोक्ष में आने की सारी कहानी चरणा नियोग बता देता है, करेक्ट। चारों अनियोग छह द्रव्यों के बाहर तो एक भी नहीं है, द्वादशांग पूरक छह द्रव्य रूप। तो जिनेन्द्र भगवान ने सात तत्व छह द्रव्य बताए, इनको क्या करो, ज्यों का त्यों, जैसे है वैसे श्रद्धान करो। दूसरी डाल में पंडित जी साहब सात तत्व संबंधी भूल बताए आए हैं कि हम क्या गलती करते हैं और उनका क्या सही है। इस डाल में अब उसको स्पेशल एक नए तरीके से हमको वो बताएंगे, उसको आप जैसे हैं वैसा मानना, अपने मन से मत मानना, हमें अपनी डेढ़ अकल नहीं लगानी है इसमें। जैसे वो है वैसा, वस्तु स्थिति के हिसाब से हमें अपनी मन स्थिति बनानी है, मन स्थिति के हिसाब से हमको वस्तु स्थिति नहीं देखनी है। आपकी जैसी आंखें हैं, आपको उससे जैसा दिखता है उसके हिसाब से चश्मा मत देखना, क्योंकि मुझे तो आंखों से सब ब्लर ब्लर दिखता है, तो मुझे तो वैसा चश्मा दो जिससे सब कुछ ब्लर ब्लर दिखे। नो, एवरीथिंग इज नॉट ब्लर्ड, सब कुछ एकदम क्लियर है। आप वो वाला चश्मा लो जिससे चीजें आपको आपकी आंख के हिसाब से नहीं, चीजों के हिसाब से दिखती है, राइट। When we go to an eye doctor and when we get our eyes tested, तो वो हमें कैसा वाला चश्मा देता है, what kind of lenses are given to us, वैसे lens जिससे जैसा हमको अपनी आंखों से दिखता है वैसा दिखता है, that lenses जिनके पास जैसी चीजें हैं वैसी दिखती है, which lens is good,
वैसी है वैसी दिखे।
करेक्ट, लोक में भी ऐसा कि जैसा मुझे दिखता है वैसा मैं देखूं, that is considered good। लोक में भी जैसे है वैसे, करेक्ट, ज्यों का त्यों श्रद्धान। अब जिसने ऐसा श्रद्धान कर लिया, कर लिया है सोई समुचित व्यवहारी, वह जीव ही व्यवहार समुचित होता है, व्यवहार समय दृष्टि से मिला। अब इन जीवों को बताओ, अब इनका रूप बताते हैं, इनको सुन सामान्य विशेष है देव प्रकृति और आरोप। अब इस प्रकार जो श्रद्धा जो करता है उसको क्या है, व्यवहार से संबंधित है। अब इन सात तत्वों के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं, इन रूप बखानों इनका वर्णन करते हैं, उन्हें सामान्य और विशेष संक्षेप से और विस्तार से, वेरी शॉर्ट जनरली एंड वेरी स्पेसिफिकली वेरी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ सुनकर मन में दृढ़ श्रद्धा को लाना, ऐसी श्रद्धा जो चलायमान नहीं हो, इस श्रद्धा को लेके आना, ठीक है। अच्छा, सम्यक दर्शन की कुछ डेफिनेशन पतवार सूत्र ग्रंथ में दी है, किसी को याद है क्या? तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्। सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा करना यह सम्यक दर्शन है। उसको पंडित दौलत राम जी की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जीव अजीव बंधरु आश्रव, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निश्चिर मोक्ष कहे जिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो, है सोई समकित। इधर तक तो तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा हो गई। इसमें पंडित साहब ने एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाया जो आचार्य उमा स्वामी ने नहीं लगाया, वो कौन सा, व्यवहारी। वहां पर जो तत्कार सूत्र में परिभाषा है सम्यक दर्शन की, वह निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है कि व्यवहार सम्यक दर्शन की? बताइए। अरे तत्वार्थ श्रद्धानम का तत्व का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन की डेफिनेशन है कि व्यवहार सम्यक दर्शन की? व्यवहार सम्यक दर्शन की, निश्चय सम्यक दर्शन की।
व्यवहार
वहां पर अकेले तत्व ने लिया आचार्य अनास्वामी देव ने, वहां पर तत्वार्थ लिया, तत्व और अर्थ, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तत्व में सात तत्व, अर्थ में छह द्रव्य, नौ पदार्थ, राइट। तो वहां पर पंडित टोडरमल जी ने नौवे अधिकार में सिद्ध किया, वहां तत्वार्थ सम्यक दर्शन जब वहां पर आचार्य उमा स्वामी बता रहे हैं, तब एक्चुअली ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट निश्चय सम्यक दर्शन। बट यदि आप अकेले सात तत्व नौ तत्व को बोलोगे, सात तत्व नौ पदार्थ, यहाँ पर ये व्यवहार सम्यक दर्शन विकल्पात्मक है, वेद रूप है, ठीक है। तो तत्वार्थ सूत्र की डेफिनेशन निश्चय सम्यक दर्शन की ही है, बट वहां पर सात तत्वों की अभेद रूप श्रद्धा, मतलब आत्मा की श्रद्धा कही, आप लोग नौवा अधिकार पढ़ना, वहां पर सम्यक दर्शन का वहां पर प्रश्न उठाया है कि सम्यक दर्शन का भैया लक्षण तत्वार्थ ही क्यों भैया, उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोषों को लगाकर ये पक्का किया कि भैया आत्मा को जानना सम्यक दर्शन बोलेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसके लिए तत्वार्थ श्रद्धान वही निश्चय से सम्यक दर्शन है, ऐसा करके वहां पर बहुत अच्छे से पंडित साहब ने उसका खुलासा किया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आप सात तत्व को भेद रूप से वर्तमान विचार भूमिका में जानो, विकल्प भूमिका में निर्णय करो, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। हम इसको संक्षेप से तथा विस्तार से सामान्यतया तथा विशेषतया वर्णन करेंगे, आप इसको सुनकर मन में दृढ़ श्रद्धा को उत्पन्न करना। ठीक है, ये वाला श्लोक एकदम सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगला वाला श्लोक अब पढ़ते हैं। अब से अब यहाँ पर से सात तत्वों का एक विशेष तरीके से, विशिष्ट रीति से पंडित दौलत राम जी वर्णन शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ इट इज रेडी। मतलब अब यहाँ से काइंड ऑफ समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें जैसे आचार्य पूज्यपाद ने अपना ग्रंथ शुरू किया, वैसा यहाँ पर अब आचार्य पंडित दौलत राम से यहाँ पर अब बात करेंगे। ठीक है, अब उनको क्या बताना है, सात तत्व बताने हैं, सात तत्वों को संक्षेप में और विशेषतया। देखो वो क्या शैली को अपना रहे हैं, कैसे हम उस सात तत्वों के बारे में बताते हैं। चौथे नंबर का श्लोक है, पहिरातन अनितर आतन पर मातम जीव त्रिधा, जीव को एक दिन पहि सातम उत्तम मध्यम चरण के देख के अंतर आतम जाई, संग दिन शुभ उपयोगी उत्तम निज ध्यानी। अब वो क्या कर रहे हैं पंडित जी साहब, उन ऊपर सात तत्वों को जो जाने, श्रद्धा करे, जैसा का तैसा जाने, उसको तो व्यवहार समझी कह दिया। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि सात तत्वों को नहीं जानने से आत्मा के कितने भेद पड़ते हैं, तो उन्होंने आत्मा के तीन प्रकार के आत्मा बताए। कितने? आत्मा तीन नहीं है, आत्मा एक ही प्रकार के है, उनका अवस्था की अपेक्षा तीन प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आत्मा कितने प्रकार के हैं?
तीन प्रकार से
आत्मा, तो आत्मा एक ही
मगर
तीन भेद है बराबर। एक आत्मा जो संसार में संलग्न है उसको बोलते हैं अंतरात्मा, करेक्ट। दूसरा आत्मा मोक्ष मार्ग में है उसमें कहते हैं बहिरात्मा, और तीसरा आत्मा मोक्ष में उसको कहते हैं परमात्मा, ठीक है? ठीक है भैया, इसीलिए नहीं सुना। संसार में जो लगा हुआ है वह अंतरात्मा, मोक्ष मार्ग में चल रहा है वह बहिरात्मा, और जो मोक्ष में है वह परमात्मा, करेक्ट?
नहीं
तीन डिवीजन, एक जो पूरी तरह संसार में संलग्न है वह हुआ बहिरात्मा।
बहिरात्मा
बहिरात्मा क्यों? बाहर में संलग्न है, जो कितना सूक्ष्म तया है। आपने योगसार ग्रंथ भी पढ़ा होगा और आपने समाधि ग्रंथ भी पढ़ा होगा, उन दोनों ग्रंथों में एकदम शुद्ध समाधि के लिए ग्रंथ है। योगसार में योग समाधि करा दी, समाधि तंत्र में आत्मा में विचार हो गया, बिल्कुल बिल्कुल वहां पर शुरू की गाथा है। तीन चार आप छोड़ दो, पांचवी छठवी गाथा से आचार्य देव सीधे सीधे आत्मा के तीन डिवीजन करते हैं, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, और फिर बहिरात्मा को ये बताकर अंतरात्मा और परमात्मा से अंतरात्मा को परमात्मा बनने की विधि बताते, पूरे एकदम डिक्टो शैली पर ग्रंथ है ये, समाधि पुष्टि योगसार परमात्मा प्रकाश। ऐसे देखो ये नाम कितने ज्यादा टेक्निकल है, आत्मा की अवस्था की अपेक्षा कितने भेद की है? तीन भेद की है। कौन कौन से? अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, आत्मा की अवस्था। अभी अवस्थाएं कौन कौन सी की अवस्थाएं भी? तीन, एक संसार अवस्था, एक मोक्ष मार्ग अवस्था और एक मोक्ष अवस्था, ठीक है? जो जीव संसार में संलग्न है, संसार में लगे हुए हैं, उनको बोलते हैं बहिरात्मा। जो जीव मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, मतलब है संसार में बट संसार को बढ़ाने में नहीं लगे हुए हैं, संसार को काटने में लगे हुए हैं, वो कौन है? अंतरात्मा। और जीवों ने बहिरात्म दशा को छोड़कर अंतरात्म दशा को अपनाकर बहुत उग्र पुरुषार्थ करके उस अंतरात्म दशा को भी छोड़ दी है, मोक्ष में पहुंच गए हैं, वे जीव परमात्मा कहलाते हैं। तीन अवस्थाएं, शुरू की दो अवस्थाओं में तो करना है, तीसरी अवस्थाओं में मात्र भोगना है, ये कृतकृत्य दशा है। तो क्या संसारी जीव बाहर की कार्यों को अपने अज्ञानों को करेगा? तो वह कौन हुआ? बहिरात्मा हुआ। मोक्ष मार्गी जीव अपने पुरुषार्थ को करेगा, तप को करेगा, संयम वैराग्य क्षमा दान इन सब को करेगा, अंतरात्मा हुआ। और परमात्मा जीव अपने परम आनंद सुख इन सब को भोगेगा, ये परमात्मा हुआ, ठीक है? अब इनके नाम टेक्निकल क्यों हमें थोड़ा समझना है, ठीक है? बहिरात्मा को बहिरात्मा क्यों बोला? अंतरात्मा को अंतरात्मा क्यों बोला? ठीक है, बहि आत्मा, बही प्लस आत्मा इज इक्वल टू बहिरात्मा। बही मतलब बाहर, अंतर प्लस आत्मा, अंत प्लस आत्मा बराबर अंतरात्मा। अंत मतलब अंतर, ठीक है? बराबर, देखना नाम कितने टेक्निकल है, कितने टेक्निकल है, जो हम लोगों ने गुरुदेव सिंह के जी स्वाध्याय में सुना था, राइट? बहुत ज्यादा सूक्ष्म। वही मतलब बाहर। अब ये बाहर और अंदर मतलब समझ में नहीं आया, कहाँ बाहर और कहाँ अंदर, तो इसका थोड़ा बहुत ट्राई करेगा। बहुत तेजस्वी फील हो रहा है, बाहर अंदर।
हेलो,
हाँ, आई एम आस्किंग आपके क्वेश्चन,
मैं समझ
बाहर मतलब कहाँ बाहर और अंदर मतलब कहाँ अंदर, मतलब अंतर आत्मा तो जिसकी आंखें हमेशा बंद रहती हो, नाक पर देखता रहता हो, जो हमेशा वो अंतर आत्मा है, लेकिन वो अंदर देख रहा है।
इसकी दृष्टि बाहर है पर वस्तु में
दृष्टि बाहर मतलब थोड़ा और भी बाहर है तो क्या क्या बाहर है उसका?
वो बाहर की बस वो सारे एक अपने आत्मा के सिवाय सारे शरीर वगैरह में अपनापन मानता है, शरीर
हाँ करेक्ट, मानता है
को
ठीक
आत्मा मानता है, शरीर है, पर
है
चीजें
ठीक है।
है, वाणी है, सबको आत्मा
तब
मानता
मैं
है।
तो मानता है वो, मेरा एक क्वेश्चन है ठीक है, उसने बाहर में तो माना, उसके अलावा और क्या क्या करता है बाहर पर वस्तु में मानने के अलावा, और क्या करता है वो?
उसका कर्ता अपने आप को माना।
करता अपने आप को मानता है, बराबर है, इसके अलावा और
एकत्व,
क्या
उसमें
करता
एकत्व एकत्व ममत्व है।
है? तो मतलब भी उसने किया ना, मतलब माना ना उसने, वो
हाँ,
भी किया है ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है?
उसको
अच्छा
पुण्य पाप वगैरह वो करता है, वो तो हमने बोला सबका करता ही मानता है।
नहीं, करता मानता है बराबर है, आई एम आस्किंग और क्या क्या करता है, मानना तो आपने बोल दिया, करता
हाँ,
क्या क्या है? हाँ
भाव का करता कि
का
मैं
करता है, आर यू श्योर? आर यू श्योर भाव का करता है? करता है भाव को कैसे?
हाँ, क्योंकि भाव एक्चुअली कर नहीं सकता, मगर उसके करने का भाव करता है।
ओके मानस, और लोग आप सबका इंटरवेंशन से थोड़ा यहाँ पर ठीक है, मान लिया कि वह परद्रव्य को देखता है वहां पर, एक रखो मत वृद्धि करता है, इसके अलावा और क्या करता है? मानस वॉट एल्स कैन यू डू?
पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति का परिणाम, हिंसा झूठ अशोक के परिणाम।
वो करता है
के कर्म शरीर जीव ए बसो बहिर्भाव छे।
देखो, वेरी 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 काइंड ऑफ सीक्रेट हिडन इन दिस सीरियल, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, बही से पहले इंपॉर्टेंट है आत्मा, आत्मा आत्मा का एक दूसरा नाम है, आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से, क्या है वो दूसरा नाम?
आपने पूछा आत्मा का दूसरा नाम जीव।
हाँ ओके, और कुछ अच्छा सा नाम जो आचार्य कुंदकुंडे इसको बहुत पसंद आया, समय सारणी
ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय
और थोड़ा इम्प्रूवमेंट उन्होंने ज्ञायक को भी नहीं दिया, उन्होंने बोला ज्ञान, ज्ञान को भी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा, बराबर आत्मा को वह काम क्या देंगे? ज्ञान। अब आप तीन भेद बनाओ उसी के, आत्मा की जगह ज्ञान रख दो, क्या भेद बनेंगे? बहिरात्मा विल बिकम बहिर्ज्ञान, अंतरात्मा विल बिकम अंतर ज्ञान, और परमात्मा विल बिकम परम ज्ञान, ठीक है? ठीक
या वेरी नाइस।
है, अब थोड़ा सा इसे विचार करते हैं, ज्ञानी या अज्ञानी, वो अज्ञानी की जैसे आप लोगों ने बात बताई कि वह परद्रव्य में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि करता है, बाहर का ही करता है ज्ञानी, उसको एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि, पर को करता हूं ऐसा मानता है, मानता है,
हाँ
मानने सेकेंडरी स्टेज, इसे सेकेंडरी स्टेज, ये द्वितीय सेकेंड में होता है, डजंट हैपन एट वन गो। पहले क्या होता है कि चाहे अंतरात्मा हो या बहिरात्मा हो, ये दोनों सबसे पहले जानते हैं। दैट्स व्हाट, इसलिए मैं पूछ रहा था वो और क्या करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तो वो ये करता है कि वह जानता है, ठीक है,
बराबर।
सबसे पहला काम भाई क्या करता है, जानता है। कौन हम परमात्म जी को एक साइड रख रहे हैं, हम बहिरात्म जी को उठा रहे हैं और अंतरात्म जी को उठा रहे हैं। हम इनमें सबसे पहला काम, ये लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये लोग हमेशा राग द्वेष भक्ति या फिर खाना या फिर द्वेष क्रोध मान ये तो हमेशा नहीं कर रहे, लेकिन एक काम है जिसको ये दोनों कंसिस्टेंटली विदाउट सीजिंग डूइंग लाइक बिल्कुल कर ही रहे हैं वाला काम,
हाँ
कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी वर्क दीज बोथ पीपल डू, अंतरात्मा वाला भी बहिरात्मा। कौन सा काम है ये, ज्ञान वाला, जानने वाला। अच्छा, अंतरात्मा के ज्ञान की पर्याय कौन कौन सी है भैया, इसकी मतीश्वर ज्ञान की पर्याय है। बहिरात्मा की ज्ञान की पर्याय कौन कौन सी है, मतीश्वर ज्ञान की पर्याय है। तो बोथ हैव सेम पर्याय, क्यों मतीश्वर क्या लेते हैं उसको, कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, दोनों का मतीश्वर ज्ञान ही है, एक का कुमति कुश्रुत है क्योंकि उसके पास मिथ्या दर्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनके सबके प्रीफिक्स लग गया कुमति कुश्रुत, ठीक है। बट द लाइक आप यदि देखोगे तो अंतरात्मा का ज्ञान भी इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है, बहिरात्मा का ज्ञान भी इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है, इसलिए दोनों प्री रिक्वायरमेंट है मति ज्ञान की, करेक्ट करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों का ज्ञान परोक्ष है, दोनों पर को जानते हैं, करेक्ट है। एनी डाउट सुन दे, सभी तक सब अग्री कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। तो कुमति कुश्रुत ज्ञान वाला बहिरात्मा और सुमति सुश्रुत ज्ञान वाला अंतरात्मा, ये दोनों के ज्ञान के जानने के तरीके में, ज्ञान की पर्याय में कुछ अंतर नहीं है। जैसे लाइक से एक मूर्ति के सामने बहिरात्मा बैठा है और मूर्ति को देख रहा है, वहीं पर अंतरात्मा बैठा है वह मूर्ति को देख रहा है, तो दोनों का मूर्ति को जानने वाला ज्ञान मतीश्वर ज्ञान होने से उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो अंतरात्मा है वह अपने ज्ञान में सब कुछ जानता हुआ भी अंतर को ग्रहण करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, वहीं बहिरात्मा का ज्ञान वही सब कुछ जानते हुए भी बाहर को ग्रहण करता है बहिरात्मा का। ज्ञान एक दोनों का, दोनों के ज्ञान की शक्ति एक दोनों की, दोनों के ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक दोनों का, दोनों के स्वपर प्रकाशक ज्ञान के चलते बहिरात्मा पर को देखता है, बाहर के ज्ञान को देखता है, अंतरात्मा स्व को अपने ज्ञान को देखता है। बहिरात्मा की दृष्टि ये पर है, अंतरात्मा की दृष्टि ज्ञान पर है। बहिर मतलब बाहर, मतलब कौन सा बाहर, अज्ञानी हो ज्ञानी हो, ज्ञान की परिधि से बाहर तो ना अज्ञानी आज तक गया ना ज्ञानी आज तक गया। हाँ, आप जो बोलते तो उसने माना, तो माना, बट दैट हैपेंड सेकंड, फर्स्ट व्हाट हैपेंड, ज्ञान हुआ
आंसर है।
उसने पुण्य पाप के विकल्प किए कि नहीं, वो भी नहीं किए, अज्ञानी ने भी नहीं किए पुण्य पाप के विकल्प, उनको भी वही जानता है, जानता है वो होते हैं और फिर मानने लगता है मैंने किए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और सिर्फ इस अज्ञान के कारण उनका कर्ता कहलाता है, उसने पुण्य पाप को किया इस कारण उनका कर्ता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अज्ञानी पुण्य पाप को करने से पुण्य पाप का कर्ता 3 साल में नहीं है, क्योंकि वह पुण्य पाप को कर नहीं सकता, विभाव परद्रव्य के परिणाम है, नैमित्तिक परिणाम है, निमित्त कर्मोदय की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकते, पराधीन परिणाम है, उनको वह कभी कर नहीं सकता, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। तो फिर अज्ञानी उसका कर्ता तो कहलाता है ना, कि हाँ जब वे पुण्य पाप परिणाम हुए उसी समय अज्ञानी का ज्ञान भी हुआ, उस ज्ञान में इन दोनों की एक समय की समानता थी, निकटता थी अत्यंत, उस कारण अज्ञानी को भ्रम हो गया कि मैंने पुण्य पाप का परिणाम किया। तो वह ज्ञान करते हुए अपने आप को पुण्य पाप का कर्ता मानता है, इसलिए वह अपने अज्ञान का कर्ता है, अज्ञान का कर्ता होने से पुण्य पाप का कर्ता है। आई बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, लेकिन बहिरात्मा को बही, बाहर, और अंतरात्मा को अंदर, ये शब्द कहाँ से आए? कि देखो दोनों के पास, आचार्य अमृतचंद्र देव जी ने समय सार में भी ये वाली बात लिखी, और बाकी उन्होंने स्वतंत्र रूप से ग्रंथ लिखा लघु तत्व स्फोट, भगवान की स्तुति वाला ग्रंथ, इसमें उन्होंने एक स्तुति करी। यही वाली गाथा समाधि तंत्र में भी आती है, यही वाली गाथा आत्मानुशासन में भी आती है, बट अमृतचंद्राचार्य देव ने जो बोला मैं वो आपको बताता हूँ। जिस ज्ञान से, जिस नित्य प्रवर्तित होते हुए ज्ञान से ये भगवान जगत के जीव अपने संसार की रचना करते हैं, आपने उसी प्रवर्तित होते हुए ज्ञान से अपने मोक्ष की रचना करी। आई आपको बात समझ में थोड़ी बहुत? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको मुझे कैसे हो गई है? एक्सप्लेन टू मी कैसे हुआ ये वाला, इसका अर्थ कैसे निकलेगा? इस ज्ञान से संसारी जीव ने अपना संसार बढ़ाया, आपने उसी ज्ञान से आपने अपने मोक्ष को बनाया। हाउ डू एक्सप्लेन दिस, कैसे होगा इसका अर्थ? नहीं समझते उसी ज्ञान से, मतलब नहीं समझते हो, कौन बताएगा?
आपने जब भी वो सम्यक ज्ञान का लाभ हमको समझाया था, उसमें वो पर्दे का एग्जांपल आपने दिया था, तो वैसा बोल सकते हैं कि वो बहिरात्मा है वो पिक्चर्स ही देखता है, और अंतरात्मा है वो ज्ञान, वो पर्दा को देखता है।
देखो ये जो बहिरात्मा और ये अंतरात्मा, ये नाम है ना, ये औपचारिक नाम है। जैसे कि आई मर्डर्ड समवन एंड देन आई एम कॉल्ड मर्डरर, मैं पहले मर्डरर नहीं कहलाता और फिर मैं मर्डर करता हूँ, करेक्ट है ना? मैं पहले कुछ गंदा काम करूं एंड देन मुझे उस काम का फिर आरोप लग के बोलता है थीव, अ थीव, तो थीव कहलाने के लिए मुझे पहले चोरी करनी पड़ेगी ना। ऐसी बहिरात्मा ये बाद के औपचारिक नाम है, पहले आत्मा को कुछ करना पड़ेगा फिर वो बहिरात्मा कहलाएगा, ठीक है? तो अमृतचंद्राचार्य थे, वो वेरी स्पेसिफिक इन डिस्कोर्स, उन्होंने क्या बोला, जिस ज्ञान से अज्ञानी जीव, जिस ज्ञान से संसारी जीव अपना संसार बनाते हैं, उसी ज्ञान से ये भगवान आपने अपने मोक्ष की रचना करी थी। क्या मतलब हुआ? सिंपल मतलब आई एम आस्किंग, वेरी सिंपल। आप जब अर्थ निकालोगे यू विल फील गुड, और आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो प्लीज एक्सप्लेन मी, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ श्लोक, व्हाट डज इट मीन, टेल मी दैट।
मतलब अज्ञानी जीव और पिनो ज्ञानी जीव भगवान दोनों ने एक ही चीज को देखा, पर दोनों ने जो मतलब उन्होंने जो भेद निकाल के जैसे जाना कि ये स्व है ये पर है, वो भगवान ने ऐसे जाना और अज्ञानी जीव ने ऐसे नहीं जाना।
नहीं देखो, भगवान तो वो बने, भगवान बनने से पहले वो क्या थे, हमारे जैसे थे कि नहीं थे?
हाँ जी।
तो अमृतचंद्राचार्य देव क्या बोल रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा, मतलब इन बोध केसेस ज्ञान इज सेम, दोनों का ज्ञान एक एक ज्ञान रखा, मतलब लाइक से रॉ मटेरियल सेम, जो मेरे पास रॉ मटेरियल है वही महावीर भगवान के जीव के पास था, ठीक है, सेम जिस ज्ञान के द्वारा विद द सेम रॉ मटेरियल, व्हाट डिड आई डू, मैंने अपने संसार को बढ़ाया उस ही ज्ञान से, मतलब ज्ञान इज नॉट डिफरेंट, मतलब बहिरात्मा का और अंतरात्मा का ज्ञान में कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ आप कह सकते हो कि भैया बहिरात्मा को सात तत्वों का ज्ञान नहीं, छह द्रव्यों का ज्ञान नहीं, अरे सात तत्व छह द्रव्य ज्ञान की डिटेलिंग है, डिटेलिंग है, जस्ट अ डिटेलिंग, नथिंग एल्स। ज्ञान में एक तो स्व का झलकना होता है, एक पर का झलकना होता है, इसके कारण ज्ञान को क्या बोलते हैं, स्व पर प्रकाशक, करेक्ट। तो जैसे अज्ञानी का ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, ऐसे ज्ञानी का ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, अज्ञानी का कुमति कुश्रुत ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, ज्ञानी का भी सुमति सुश्रुत ज्ञान कैसा है, स्व पर प्रकाशक है, बोथ है सेम ज्ञान, फर्स्ट लेट्स एस्टेब्लिश दैट, ठीक है। आप अभी इसमें मिथ्यात्व को नहीं लेके आना, उसके दर्शन श्रद्धा को मत लाना, अभी सिर्फ पूरा ज्ञान को रखो, ज्ञान दोनों का सेम है, ठीक है, ठीक है। नाउ मेरे पास एक ज्ञान था, मैं जब इस ज्ञान में ज्ञान को तो नहीं देखता, जो ज्ञान स्व को दिखा रहा है, स्वयं को दिखा रहा है, जो ज्ञान स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, मैं उस ज्ञान को तो नहीं देखता, मैं किसको देखता हूँ, किसको देखता हूँ, मैं उसमें आने वाले अन्य जो पर हैं, तो मैं ज्ञान के अंदर तो नहीं देखता, ज्ञान के बाहर देखता हूँ। जैसे कि कमरे में रात भर से लाइट जल रही थी, राइट, और इसमें कहाँ पर लाइट थी मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि हर जगह उजाला है तो लाइट जल रही है। धीरे धीरे मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग हुई तो फिर अब लाइट की कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट, लाइट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा मैं इसको बंद करूंगा, तो कहाँ कहाँ पर लाइट फैल रही है, कि हर जगह लाइट फैल रही है, तो मैंने कोने से स्टार्ट किया, चलो पहले मैं कोने की लाइट को बुझाता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे लाइन से बढ़ता गया, और मैंने फिर एक एक करके हर जगह की लाइट को बुझा दिया। ऐसे ही लाइट को बुझाते होगे ना आप, जब आपको लाइट खत्म करनी होगी इस रूम की, करेक्ट, जहां जहां इसका प्रकाश फैला है वहां वहां के प्रकाश को पकड़कर बंद करते हो गए आप लोग, ऐसी तो लाइट खत्म करते हो एक कमरे की, कैसे करते हो आप लोग, टेल मी, इन दिस रूम देयर इज ओनली वन लाइट, ओके, बिकॉज ऑफ दैट लाइट पूरा रूम चल रहा है, पूरे रूम में प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब नाउ आई एम नॉट, आई डू नॉट रिक्वायर लाइट नाउ, सो नाउ आई हैव टू स्विच ऑफ दिस पूरा प्रकाश, तो मैं क्या करूं, किसी भी कोने को पकड़ लूं और वहां से धीरे धीरे करके प्रकाश को खत्म करूं, है ना, यही तो करूंगा मैं, और क्या करूंगा, व्हाट डू यू डू मानस, आप क्या करोगे, हेलो, अरे टेल मी आप लोग क्या करोगे, स्विच ऑफ द लाइट,
स्विच है उसको ऑफ कर देंगे,
करेक्ट, यानी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन एवरी कॉर्नर मैं डायरेक्टली उस बल्ब के पास जाऊं ना जिस बल्ब से प्रकाश आ रहा है, करेक्ट, करेक्ट। तो आपने मोह राग द्वेष सारे परिणाम देखे, ये सारे परिणाम ये उसके कोने थे जिसके कारण आपके ज्ञान का बल्ब जलता था, उसमें राग द्वेष मोह ये सब कुछ दिखते थे। आपको लगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है, मोहराग विष आदि परिणाम हो रहे, चलो मैं एक एक करके मोहराग विष को बुझाता हूँ, एंड यू वेंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ इट, बट यू डिड नॉट गो फ्रॉम वेयर दोज मोहराग विष परिणाम, कौन हाईलाइट कर रहा था उनको, कौन दिखा रहा था, यदि मैं ज्ञान के पास जाता, उस बल्ब के पास जाता, देन आई थिंक मेरी बहुत सारी मेहनत बचती, और शायद फिर क्या पता मोह राग द्वेष परिणाम भी उत्पन्न नहीं होते, करेक्ट। तो बहिरात्मा यानी कि बाहर, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, इसके दो पार्ट स्व और पर, जब जीव स्व को छोड़कर पर को देखता है तो बहिरात्मा कहलाता है, दिखते उसको दोनों है, गड़बड़ वहां पर नहीं करना, दोनों का ज्ञान ज्ञान रूप से समान है, अंतर तब पड़ेगा जब हम उसमें श्रद्धान भी लेके आ जाएंगे, बाकी नहीं तो जैसा मैं उस मूर्ति को देख रहा हूँ वैसे ही वो अपनी आंखों से देख रहा है, चक्षु दर्शन मति ज्ञान उसी के कारण वो देख रहा है, ऐसे मैं देख रहा हूँ। बट द डिफरेंस इज व्हाट, वो उस ज्ञान में देखते हुए भी मूर्ति को देखता है, मैं ज्ञान में देखते हुए भी मूर्ति दिखती हुई भी ज्ञान को देखता हूँ, तो मैं ज्ञान को पकड़ लेता हूँ उनको मेरा मोक्ष मार्ग सदता है, मैं अंतरात्मा कहलाता हूँ, आत्मा के अंदर डूबा नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा अभ्यास सतत प्रज्ञा श्रेणी की तीक्ष्णता से ज्ञान को ही पकड़े हुए है, देहों में नहीं मिलता, इसलिए मैं जागृत हूँ, इसलिए मेरा ज्ञान बाहर देखते हुए भी ज्ञान को ही देखता है, इसलिए अंतरात्मा हूं, और उसका ज्ञान ज्ञान को देखते हुए भी बाहर ही देख रहा है, इसलिए वो बहिरात्मा है। समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ ज्ञान ही है, पूरे हमारे जितने डिस्टिंक्शन जितने भी हमारे नोमेनक्लेचर्स हैं जैनिज्म के सब ज्ञान बेस्ड ही है, बहिरात्मा बाहर क्या देख रहा है, बाहर जो बाहर में लीन है देखो वो बस जानने के अलावा वो भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो जानने में आ रहे हैं उनमें वह भ्रम करता है क्या मैंने किया, इसलिए वह क्या कहलाता है बहिरात्मा। अंतरात्मा वाला कुछ नया काम नहीं कर रहा, उसके पास भी रॉ मटेरियल तो सिर्फ उसका स्वपर प्रकाशित ज्ञान ही है, इस ज्ञान में वह क्या करता है स्व को देखता है, फर्क नहीं देखता, मतलब ज्ञान को देखता है, तो हम स्व और पर का अर्थ ही अलग अलग करते हैं, पर को हम मानते हैं परद्रव्य, स्व को मानते हैं प्रिया अपने आत्मा के प्रवेश या अपना कुछ, स्व मतलब ज्ञान, स्व पर प्रकाशक है मतलब ज्ञान, जैसे कि बल्ब पूरे रूम को भी प्रकाश देता है तो बल्ब अपने आप को दिखाता कि नहीं दिखाता, हाँ आप बल्ब को देख पाते कि नहीं देख पाते, आपको बल्ब बल्ब को किसने दिखाया, आपको बल्ब ने खुद में खुद लाइट हो रहा था उसकी लाइट जल रही थी तो मुझे पता पड़ा यार ये तो बल्ब है, और रूम को किसने दिखाया, बल्ब नहीं दिखाया, स्व पर बल्ब कैसा है, स्व पर प्रकाशक, बल्ब रूम को भी प्रकाशित करता है और बल्ब अपनी एग्जिस्टेंस भी चीख चीख कर बोलता है कि मैं देखो बल्ब हूँ, मैं इस रूम को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं इस रूम को प्रकाशित कर रहा हूँ, आपको एक सेकंड भी डाउट नहीं होता कि देखो इस पंखे में ऐसे ये प्रकाश आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको उस पंखे के बाजू में लगा हुआ वो बल्ब चीख चीख कर बोल रहा है कि देखो मैं स्वयं को दिखा रहा हूँ ना, मुझमें से लाइट आ रही है, मुझमें से लाइट आ रही है, मुझमें से लाइट आ रही है, बताता कि नहीं बताता बल्ब,
हाँ
आपको कभी डाउट तो नहीं होता कि सीलिंग में से लाइट आ रही है कितनी अच्छी है,
नहीं
नहीं क्यों, क्योंकि आपको पता है देखो बल्ब बल्ब ये प्रकाश कहाँ से आ रही है, बल्ब कैसे बता रहा है चीख कर, कमरे में तो वो थोड़ा कम प्रकाश देगा, अपने आप को पूरा प्रकाशित करेगा, करेक्ट, इसलिए आत्मा स्व प्रकाशक मतलब ये ज्ञान का बल्ब, स्व मतलब ज्ञान को प्रकाशित करता है, आपको आत्मा के प्रदेश दिखा देगा नहीं, वो केवल ज्ञान में दिखेंगे दिखेंगे तो अमूर्त के अमूर्तिक तरीके दिखेंगे, वो आंखों से दिखने वाली चीज भी नहीं है, वो केवल ज्ञान के विषय है, वो अभी से आत्मा आकार दिख जाएगा आपको, एक ज्योति के अंदर जल्दी दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ज्ञान अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है, ये उसका स्व प्रकाशकपना है, और उसके प्रकाश में अन्य गेय सहज तरीके झलकते हैं, ये उसका पर प्रकाशकपना है, ये ज्ञान चीख चीख कर कह रहा है कि मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं, लेकिन हम चीख चीख कर कह रहे अरे मैंने वो जाना मैंने वो जाना मैंने वो जाना, तो ये बहिरात्मा ज्ञान बोल रहा था कि मैंने जाना, इसने बोला वो जाना, देख लो आप जानने में एक में पदार्थ मुख्य है एक में ज्ञान मुख्य है, जो ज्ञान को मुख्य करते हैं वे अंतरात्मा है, जो ये को पदार्थ को कि मैंने ये जाना वे बहिरात्मा, ठीक है, ये थोड़ा बहिरात्मा अंतरात्मा की चर्चा है, बहुत सूक्ष्म है, अध्यात्म के जितने भी शास्त्र होते हैं उसमें सबसे पहले जीव की डिस्टिंक्शन करते हैं बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, उसके बाद वो आचार्य जी वेरी सिस्टमेटिकली सात तत्वों का वर्णन शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप आएगा। अभी मैंने आपका टाइम समझ आता है, सॉरी, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन आगे बढ़ेंगे। आप लोग वापस सोचिए, बहिरात्मा को बही आत्म बहिर्ज्ञान, उसका ज्ञान और अंतरात्मा के ज्ञान में अंतर नहीं, लेकिन ज्ञान में लक्ष्य क्या है, एक ही दृष्टि बाहर में है, एक ही अंतर में है। एक स्टोरी सुनी होगी आपने मानस, यूरेका, पता है आपको यूरेका? यूरेका,
हाँ जी।
व्हाट इज यूरेका, क्या था भैया? हाँ, देयर वाज वन साइंटिस्ट, इट वाज इन बाथ। हाँ,
Archimedes
का नाम सुना? Yes, Archimedes, right? So now he was in his bathtub, right? If I remember it, right?
Yeah.
And suddenly उसको क्या आया? Idea आया. And what did he say? Eureka, right? ठीक है? My question is, ये idea कहाँ से आया? अचानक से, और इतनी देर से, इतने दिनों से सोच रहा है, why did not it come before? And it came to him, then how is he important? Like, why do I like? मतलब उसने महान काम क्या किया? जैसे उसको आया, ऐसे मुझे भी आ सकता था, करेक्ट? तो ये आइडिया उसके ज्ञान की उपज नहीं थी। He did not make this idea. There is no, or you know, contribution he did towards, you know, getting that idea. It came to it him. ठीक है? उसने उस आइडिया को जाना. That's important. ठीक है, हमारे पास सारे आइडियाज आते हैं, इनको हम बोलते हैं विकल्प। हम इन विकल्पों को करते नहीं हैं, हम इनको जानते हैं, जानते हैं। ठीक है, ऐसे हम पुण्य पाप इनको करते नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इस भेद विज्ञान का अभाव है, तो मजबूरी में हम इनके कर्ता कहलाते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग थोड़ा इस पर विचार करिएगा। वी डिस्कस मोर अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में गुड डिस्कशन का भी प्रोसेस करेंगे। ठीक है,
हाँ,
ओके, चलिए। आज ही मानस जी, मानस जी,
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तकन मुँह सदा देत हूँ दो, नौ बार नमकामंता।